नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एवं उससे सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस अध्ययन में बाइबल के वचनों को सीखते हैं और मुझे आशा है कि आप सब आज फिर से नए वचनों को सीखकर अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। मैं अपने सभी नए श्रोता मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से गलातियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने हमें विश्वास और अनुग्रह के बारे में बताया और इस बात के बारे में हमें बताया गया कि हम जो मसीही विश्वासी हैं स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आज अपने जीवित वचन के द्वारा हमारे हृदय को आप छेदें, हम सब से बोले और बातचीत करें ताकि प्रभु हम आपके वचन के उन भेद की बातों को समझ सकें, सीख सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को स्पर्श करें ताकि वे उससे बाहर आकर आपकी निकटता में, आप में बढ़ने पाएं। हाँ प्रभु, आज की इस अध्ययन पर आपकी विशेष आशीष हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे विश्वास द्वारा अनुग्रह के अधीन उद्धार और जीवन की चर्चा, जिसे पौलुस हमें बताता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गलातियों के पत्री 5:5 में, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। आशा की हुई धार्मिकता, संपूर्ण पत्र में मात्र यही एक भविष्यवाणी का संदर्भ है। यह एक अत्यधिक असामान्य बात है, क्योंकि अपने अन्य सब पत्रों में पौलुस कलीसिया के उठाए जाने या मसीह द्वारा फिर आकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने की चर्चा करता है, परंतु गलातियों की पत्री में वह केवल यही एक बात कहता है, विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता। और यह विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, हमारी एकमात्र आशा, एक धन्य आशा है, और मसीह यीशु हमारे निमित्त धार्मिकता हुआ। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि गलातियों की पत्री मार्टिन लूथर के लिए अत्यधिक महत्व रखती थी, वरन अन्य धर्म सुधारकों में भी इसका महान महत्व था। मुझे पूरा विश्वास है कि यह भी एक कारण है कि उन्होंने भविष्यवाणी पर बहुत कम समय ध्यान दिया। और मेरे विचार में आरंभिक कलीसिया ने जो लिखा उसके बाद 20वीं शताब्दी तक भविष्यवाणी का विकास नहीं हुआ है, परंतु इस 20वीं शताब्दी में भविष्यवाणी का अद्भुत विकास हुआ है। बाइबल संबंधित संस्थान संभवतः इस अभियान के आरंभिक चरण थे। इसके बाद 2-3 सेमिनरियों ने सहस्त्र वर्ष के पूर्व की स्थिति पर चर्चा आरंभ की, जिसके कारण अन्यों को भविष्यवाणी के अध्ययन के लिए विवश होना पड़ा। सच तो यह है कि सहस्त्र वर्ष राज्य के मतधारक वे ही हैं जो सहस्त्र वर्ष के उत्तर काल के मतधारक थे, जो भविष्यवाणी के अध्ययन हेतु विवश हुए थे। निसंदेह वे प्रेरिताई के युग पश्चात पितरों का संदर्भ देने में बेजोड़ थे। उन्होंने कहा कि अगस्टिन यह कहता है, वह कहता है, निसंदेह उसने कहा था, वह इस पृथ्वी पर प्रभु के राज्य की स्थापना करना चाहता था, अर्थात कलीसिया प्रभु के राज्य की स्थापना करेगी। इस विचार के कारण सहस्त्र वर्ष के उत्तर काल की धारणा का जन्म हुआ, जो गलत धारणा थी। मेरे विचार में हमें संत अगस्तीन की आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके युग में भविष्यवाणी का अध्ययन विकसित नहीं था। उसके युग का सबसे महत्वपूर्ण विषय था मसीह का व्यक्तित्व, जैसे कि उत्तर काल में उद्धार एक महत्वपूर्ण विषय हो गया था। अतः पौलुस इस पत्र में, अर्थात गलातियों की पत्री में, भविष्यवाणी का यह एक संक्षिप्त संदर्भ है, क्योंकि उसका ध्यान केंद्र सुसमाचार और विश्वासी जीवन ही है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक में प्राथमिकता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, और किसी भी युग की चर्चा करते समय उस समय की प्राथमिकता को भी देखना अति महत्वपूर्ण होता है। ऐसा न करने पर वचन को गलत समझा जा सकता है, और उनकी व्याख्या भी गलत हो सकती है, और भविष्यवाणी के संबंध में कलीसियाई पितरों का उद्धरण देना ऐसा ही है। अंततः भविष्यवाणी पर पांडित्य पौलुस, पत्रस, याकूब, मत्ती, मरकुस और लूका का है। हमें ध्यान देना है कि उन्होंने भविष्यवाणी के संबंध में क्या लिखा है। परंतु गलातियों को पत्र लिखते समय पौलुस कहता है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्री 5:6 में लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। वैधानिकता द्वारा मसीही जीवन उत्पन्न नहीं होता है। इसका सूत्र सरल है, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। गलातियों के पत्र में आगे वह समझाता है, परंतु उसका सूत्र सरल ही है, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। मेरे मित्रों, यह मसीही जीवन का मार्ग है। विश्वास प्रेम के द्वारा सक्रिय होता है। प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। हम गलातियों की पत्री 5:7 में पढ़ते हैं, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। पौलुस गलातिया के विश्वासियों को कोमल ताड़ना देता है। यहूदियों के आने तक उनका जीवन सराहनीय था। सत्य सत्य सुसमाचार और मसीह यीशु मनुष्य है। गलातियों के पत्र 5:8 में लिखा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ध्यान दीजिए, यह मसीह से नहीं, कहीं और से आया है। तब आगे लिखा है गलातियों के पत्र 5:9 में, थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। धर्मशास्त्र में पुराना नियम और नया नियम दोनों में खमीर को दुष्टता का प्रतीक माना गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 13:33 में एक स्त्री का उदाहरण है कि उसने 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाया। यहाँ खमीर को प्रभु यीशु का सुसमाचार न समझें। यह वह सुसमाचार है जो आज प्रचलित है। यह अधर्म है जिसे पौलुस तो कहता है कि सुसमाचार है ही नहीं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी कि फरीसियों के खमीर से सतर्क रहें, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 16:6 में पाते हैं। मेरे विचार में आज हमें रूढ़िवाद के खमीर से सावधान रहना है। यह एक अत्यधिक भयावह बात है। रूढ़िवाद के अनुसार प्रभु यीशु हमारे लिए मर तो गया, परंतु उसकी मृत्यु उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं थी। परंतु हमें बाप्तिस्मा के अनुष्ठान को निभाना या पवित्र आत्मा से कुछ और भी मांगना है कि हमें इसके साथ कुछ और भी दे। मेरे मित्रों, मैंने जब मसीह यीशु को ग्रहण किया तो सब कुछ पा लिया। अब मेरे उद्धार प्राप्त करने के बाद के अनुभव हैं, परंतु उनका मेरे उद्धार से कोई भी संबंध नहीं है। केवल मसीह ही है जो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु ने कहा था कि एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाया। यह सुसमाचार का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में खमीर सुसमाचार में छिपा है और वह सांसारिक मनुष्य के लिए स्वादिष्ट है। मुझे अपने बचपन में माताजी द्वारा पकवान बनाना अब भी याद है कि वे खमीर डला होने के कारण कैसे फूल जाते थे और मैं उन पर मक्खन और शहद डालकर खाता था। आज सुसमाचार में बहुत अधिक खमीर मिलाया जाता है कि वह स्वादिष्ट हो। सांसारिक मनुष्य को खमीर का भोजन अच्छा लगता है। हमें चेतावनी दी गई है कि ऐसा ना करें। हम गलातियों के पत्र 5:10 में आगे पढ़ते हैं, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। ध्यान दीजिए, पौलुस को पूरा विश्वास था कि गलातिया के विश्वासी अंत में यहूदियों की शिक्षा को त्याग देंगे। पौलुस कहता है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि जब तुम जमीन पर पांव रखोगे और तुम्हारा सिर बादलों के बाहर आ जाएगा, तब तुम उस सुसमाचार को पुनः स्वीकार करोगे जो तुम्हें सुनाया गया था, और तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि यहूदियों की शिक्षा तुम्हारे लिए बाधा का कारण थी और वह खमीर स्वरूप थी। गलातियों के पत्र 5:11 में लिखा है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हो? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस कहता है कि यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? सुसमाचार में और कुछ जोड़ दो तो वह स्वीकार किया जाता है। सुसमाचार अपने आप में तो सांसारिक मनुष्य द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। सुसमाचार का प्रचार कुछ लोगों द्वारा विरोध का सामना करता है। अतः पौलुस कहता है कि यदि वह सुसमाचार में कुछ जोड़ रहा है तो वह सताया क्यों जाता है, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। सच तो यह है कि मसीह यीशु का क्रूस मनुष्य के घमंड के लिए ठोकर का कारण है, वह मनुष्य के सदाचार के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि वह करता है कि कर्मों द्वारा धार्मिकता नहीं है। जी हाँ, सुसमाचार उसके दर्शन शास्त्र के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि वह विश्वास की पुकार करता है, तर्क की नहीं। वह मनुष्य की संस्कृति के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि उसका सत्य शिशुओं पर प्रकट होता है। सुसमाचार उसकी जाति के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि वह कंगालों और दीन मनुष्यों का चुनाव करता है। सुसमाचार उसकी संकल्पित शक्ति के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि वह शर्त रहित समर्पण की खोज करता है। सुसमाचार उसके घमंड के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि वह मनुष्य के मन के पाप की अति को प्रकट करता है। वह मनुष्य के लिए ही ठोकर का कारण है, क्योंकि वह उससे नए जन्म की पुकार करता है, और यह सब फरीसियों के लिए लज्जा का कारण था। यीशु ने निकोदिमुस से उस रात कहा था कि उसे नया जन्म लेना आवश्यक है। उसे अपमान की प्रतीति हुई, क्योंकि वह बहुत धर्मी था। यही कारण है कि नए जन्म के प्रचारक कलीसिया में कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि कुछ लोग नया जन्म पाना ही नहीं चाहते हैं। उनकी समझ में वे धर्मी हैं, उनके लिए यह अपमानजनक बात है। क्रूस ठोकर का कारण है, परंतु हमें इसे बढ़ा चढ़ा कर कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें सावधान रहना है। मेरे एक अध्यापक ने बड़ी बुद्धिमानी की बात कही, युवाओं, सुसमाचार का बल कम मत करना, उसमें परिवर्तन मत लाना, क्योंकि उसमें क्रूस की ठोकर है। आपको इसे समझना है, परंतु ठोकर को बढ़ा चढ़ा कर मत दर्शाना। कभी कभी हम सुसमाचार प्रचार में कठोर हो जाते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करे। मेरी सेवकाई में एक परिवार का विरोध किया गया और वे कलीसिया से अलग हो गए, जिसने उन्हें ठोकर खिलाई थी। उससे मैंने कहा कि हमें किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि वे किसी बात से ठोकर खाएं, तो केवल उस सुसमाचार से जिसका मैं प्रचार करता हूं, न आप न मैं, परंतु सुसमाचार। हम गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे काट डाले जाते, काश ये यहूदी तुमसे दूर हो जाते। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 13 पद में आगे लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मेरे मित्रों, मसीही जीवन जीने की 3 शैलियां हैं। 2 तो लाभकारी नहीं है, 1 रूढ़िवाद है जिसके बारे में पौलुस कह रहा है, दूसरी है लंपट जीवन, जिसके बारे में पौलुस ने रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है, उधार प्राप्त करके भी पाप में जीवन जीना, जिसके लिए पौलुस कहता है, कदापि नहीं, आप पाप में जीवन जीकर विश्वासी नहीं हो सकते हैं। आप पाप में तो गिरेंगे अवश्य, परंतु तुरंत निकल आएंगे। उड़ाव पुत्र सूरों के बाड़े में था, परंतु वहां रुका नहीं रहा, बाहर निकल आया। अतः मसीही जीवन न तो रूढ़िवाद है और न ही लंपट का जीवन है। तीसरी जीवन शैली है स्वतंत्रता का जीवन। इस अध्याय के शेष भाग में पौलुस हमें इस जीवन के जीने की विधि सिखाएगा। रूढ़िवादी जीवन में 10 आज्ञाएं ही नहीं, विधि विधान का एक प्रारूप है, जिस पर आज अनेक विश्वासी आचरण करते हैं। वे आपसे कहेंगे, कहीं नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। मुझे एक महिला का स्मरण आता है जो बाइबल की शिक्षा देने में असाधारण थी। एक बार एक संत ने आकर मुझसे पूछा, क्या आपके विचार में वह वास्तव में विश्वासी है? वह तो सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करती है। किसने कह दिया कि सौंदर्य प्रसाधनों से किसी के विश्वास का प्रमाण घट जाता है या प्रकट होता है? मैंने उससे कहा कि वह मसीह की स्वतंत्रता में निर्वाह करती है। उसकी आयु ही ऐसी थी कि उसे कुछ अधिक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना होता था, और सच तो यह है कि क्रीम पाउडर से उसे अधिक लाभ नहीं हो रहा था, परंतु वह मसीह में स्वतंत्र थी। आपका मांस खाना या नहीं खाना परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य होने का कारण नहीं है। इसी प्रकार सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना या नहीं करना आपके परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं ठहराता है। पौलुस कहता है कि आप प्रत्येक आज्ञा का पालन करके भी मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। यदि आप 10 आज्ञाओं का पालन करें और मनुष्यों द्वारा स्थापित नियमों का भी पालन करें, तो भी आप मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दो परस्पर विरोधी जीवन शैलियों का पालन करते हैं। वे रूढ़िवादियों की नाई अतिवादी हैं। मसीही जीवन दोनों में से कोई भी नहीं है, वह स्वतंत्रता का जीवन है। जी हाँ, ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अनुग्रह का सुसमाचार विश्वासियों के लिए क्या करता है? यह अनुग्रह है, व्यवस्था नहीं, जो हमें बुराई से मुक्त करके भलाई करवाती है। अनुग्रह हमें पाप के लिए नहीं, पाप से मुक्ति दिलाता है। विश्वासी के मन में परमेश्वर को प्रसन्न करने की कामना होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह दास है, परंतु इसलिए कि वह पुत्र है और पिता को प्रसन्न करने की लालसा उसके मन में है। जी हाँ, वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। भय के कारण नहीं कि परमेश्वर मानव बैरी है, परंतु इसलिए कि वह स्वयं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उसका मित्र है। परमेश्वर उससे प्रेम करता है। वह परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करता कि उस पर व्यवस्था का दबाव है, परंतु इसलिए कि उसके भीतर एक सिद्धांत है, वरन मसीह का जीवन। मेरे प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं सदा यही सोचता हूँ कि क्या कभी किसी शिष्य ने कहा, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, और प्रभु ने कहा, हाँ मेरी आज्ञा मानने की बात भूल जा। आज्ञा पालन का आधार उसके साथ प्रेम के संबंध हैं। व्यवस्था हमें कभी भी इस स्थिति में नहीं ला सकती थी। जी हाँ, वह तो आरंभ ही से नकारात्मक है, उसकी तो भलाई भी नकारात्मक थी, जैसी आज के अधिकांश मनुष्यों की है। काश मैं अधिक से अधिक पवित्र जनों तक इस सत्य को पहुंचा पाता। आपकी नकारात्मक भलाई वैधानिक है। आप कहते हैं, मैं यह नहीं करता, वह नहीं करता, परंतु आप करते क्या हैं? मेरे मित्रों, हर प्रकार का विधि विधान नकारात्मक भलाई ही उत्पन्न करेगा। वे कभी भी सकारात्मक भलाई के स्तर तक ऊपर नहीं उठेंगे। जहां मनुष्य परमेश्वर से प्रेम के कारण उसे प्रसन्न करना चाहता हो, वह इसी आधार पर हमसे सेवा चाहता है। अब पौलुस इसका सारांश एक वाक्य में देकर अपना अर्थ हमें स्पष्ट करेगा। आइए हम पढ़ें गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद। लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहां पर व्यवस्था निम्नतम घटक पर लाई गई है। यह व्यवस्था पालकों की अग्नि परीक्षा है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम मात्र प्रेम कर। क्या यह संभव है? गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। मैं इस पद पर सदा ही प्रचार करना चाहता हूं। मैं इसका शीर्षक मसीही नरभक्षी रखूंगा। क्या आप जानते हैं कि अनेक कलीसियाओं में विश्वासी एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हैं। उनका काटना पागल कुत्तों के समान है। ऐसे घावों का कोई उपचार नहीं है, आप केवल कष्ट उठाते रहेंगे। आज बहुत पागल कुत्ते हैं, वे आपको काटेंगे पर खा भी जाएंगे। दुर्भाग्य से आज संसार कलीसिया को अनदेखा करता है और मैं क्षमा चाहता हूं। इसका कारण है कि हमारी कलीसियाओं में बहुत अच्छे लोग हैं और अद्भुत प्रचारक हैं, परंतु विश्वासियों के जीवन मनुष्य को कलीसियाओं से दूर करते हैं। मैं इसके उदाहरण को देख चुका हूं। मैंने वे कलीसियाएं देखी हैं जिनमें परस्पर प्रेम नहीं है, वे एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस कलीसिया के सदस्य हैं। मैं नहीं जानता कि ये सब बातें आपके कलीसियाओं में होती हैं, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए विचार करने की बात यह है कि आज हम इस बात को जान लें कि यदि हम व्यवस्था के अधीन हैं तो हम सफलता नहीं पाएंगे, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा हम उद्धार के आनंद को प्राप्त करते हैं। आइए हम अपने जीवन में आज के इस वचन को ग्रहण करें और इस बात को समझने का यत्न करें ताकि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को दिखा सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है। यह आपके आत्मिक जीवन के लिए अवश्य ही लाभकारी ठहरा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। है।